चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी हैं, इस विषय में हम जीवात्माओं के श्रेणियों की चर्चा कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विश्लेषण के द्वारा ये साबित किया कि कृष्ण भक्त बहुत ही दुर्लभ होता है। और शुरुआत कर कितने श्रेणियां हैं और आगे चल के कृष्ण भक्त पहुंचने तक हमें थोड़ी समझ आ सकती है कि कृष्ण भक्त वास्तव में कितना दुर्लभ है। कोटि ज्ञान मध्य होए एक जन मुक्त,
कोटि ज्ञान मध्य होए एक जन मुक्त,
कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त,
कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त।
कोटि ज्ञानियों में से मध्य एक जन कोई विरला ही मुक्त पुरुष होता है, और ऐसे कोटि मुक्त पुरुषों में से विरला कोई एक ही कृष्ण भक्त मिलता है। तो ये मुक्त पुरुष कौन होता है? वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वास्तव में मुक्त नहीं है, अपने आप को मुक्त समझता है। विमुक्त मानिना, कौन सा श्लोक है ये विमुक्त मानिना?
कर्मे
ये अन्य अरविंदाक्ष,
हाँ बोलो,
ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, तो ये अष्ट भावात अभिशुद्ध बुद्धि है। परम्परम तथा पतंतु नादृति
विष्णु, क्या मतलब इसका? तुम संभालते हैं तो क्या मतलब इसका?
जो कमल नयन वाले भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं लेता है वह अपने आप को मुक्त मान सकता है, लेकिन वह वहां से भी वापस गिर जाता है।
और विस्तार में ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, वो अपने आप को मुक्त मानता है। फिर तो ये स्वभावत
अभिशुद्ध बुद्धि,
अभिशुद्ध बुद्धि का मतलब
उनका बुद्धि अभी तक पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ,
बुद्धि पूर्णतया शुद्ध हुआ नहीं है। फिर परम पदम ततः का क्या मतलब?
ऊपर चढ़ते
जिस पद पे पहुंचा है वहां से वापस गिर गया।
गिरने की बात अभी तक नहीं आई। आरोह्य कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण बहुत कष्ट से, बड़े कठिनाई से बहुत तपस्या करने पड़ती है ना, आरोह्य, फिर वो आरूढ़ हो जाता है, चढ़ता है। परम पदम ततः, परंतु वास्तव में परम पद को प्राप्त नहीं करता है, वो सोचता है कि यह परम पद है। अभिशुद्ध बुद्धि है ना, बुद्धि शुद्ध है, विमुक्त मानिना है, अपने आप को मुक्त मानता है परंतु मुक्त नहीं है वास्तव में। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, फिर पतंती अधः, फिर वो उसका पतन हो जाता है नीचे की ओर। क्यों पतन होता है उस स्तर से भी?
अनादृत
युष्मन अंग्रयः, क्या मतलब इसका?
आपके चरण कमलों को धारण किया,
आपके चरण कमलों का अनादर उसने किया है, इसलिए तो विमुक्त मानिना है। तो ये लोग जो अपने आप को ज्ञान योग के पथ में चल के मुक्त मानते हैं, भले वो आगे बढ़े होंगे उस पथ में, तो ऐसे लोगों की बात यहाँ हो रही है जो विमुक्त मुक्त पुरुष एकजन मुक्त, और उनका ज्ञान जो है वो पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। जब तक कि वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानेंगे, परम सत्य के बारे में जो उनके बारे में उनके मन में जानकारी है वो अपूर्ण है। चाहे वो निराकार ब्रह्म की खोज में होंगे या तो परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे होंगे, तो उनकी मुक्ति की जो धारणा है वो अपूर्ण है, क्योंकि वो सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना यही जीवन का उद्देश्य है। दूसरी ओर जो कृष्ण भक्त होता है, परम सत्य की धारणा परिपूर्ण होती है उसकी, मुक्ति की धारणा परिपूर्ण होती है उसकी, इसलिए वो शांत रहता है। वैष्णव की मुक्ति की धारणा क्या होती है? मुक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या है?
मुक्ति स्वरूप स्वरूप अपने स्थिति में को प्राप्त करना, तो मतलब तो मनुष्य जो स्थिति है का नित्य दास है, तो उस स्थिति को प्राप्त करना उसमें उसको,
तो जीव का जो स्वरूप है कृष्ण का दास होना, उस स्थिति को प्राप्त करना, ये मुक्ति है। मुक्तिर हितवान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, तो इस व्यवस्था इस स्थिति को मुक्ति कहते हैं। तो चाहे व्यक्ति शरीर के अंदर हो, भौतिक शरीर के अंदर हो या ना हो, वो गोलोक वृंदावन में हो या जहां भी क्यों ना हो, परंतु यदि वो कृष्ण दास है वास्तव में, तब वो मुक्त कहलाता है। इसलिए वो शांत है। इसलिए आगे चल के फिर अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक महाप्रभु कहते हैं, आप में से अनेकों ने इसको कंठस्थ भी किया होगा, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत,
कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत,
भक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले शांत,
भक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले शांत।
कृष्ण भक्त ये निष्काम होता है, इसलिए शांत होता है। दूसरी ओर जो कामी लोग होते हैं, कामी अर्थात जिनके मन में कोई कामना है, डिजायर्स, किस तरह के कामी लोग होते हैं? तीन तरह के कामी लोग होते हैं, सिद्धि भुक्ति मुक्ति सिद्धि, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। तो भुक्ति कामी कौन होता है?
भोग कर्मी,
जो भोग करने वाला, जो उसको भोग चाहिए जीवन में, वो मुक्ति का वो भुक्ति कामी होता है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं तो कौन होते हैं?
मुक्ति
कामी। और सिद्धि कामी कौन होते?
योगी
जन, जो अपने योगाभ्यास के द्वारा तरह तरह के सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई बताएंगे सिद्धियों का उदाहरण?
अनिमा
क्या है? अनिमा
छोटा से छोटा
हो जाना, अपने आप को बहुत छोटा कर सकते हैं, कहां भी जा सकते हैं, यहीं जा सकते हैं। और अनिमा महिमा बहुत बड़ा हो जाना, इतना बड़ा हो जाना कि देख भी नहीं सके इतना बड़ा। फिर प्राप्ति हल्का बनना, कपास की तरह, रुई की तरह हल्का बनना, इसलिए वो उड़ भी सकता है। प्राप्ति, किसी भी चीज को प्राप्त करना, ऐसे कई सिद्धियां हैं। तो जो कर्मी लोग हैं वो भुक्ति कामी कहलाते हैं। जो ज्ञान योग के पथ में चलते हैं ज्ञानी लोग, उनको मुक्ति कामी कहते हैं। और जो अष्टांग योग आदि के पथ में चलते हैं और भक्त नहीं बने हैं अभी तक, उनको सिद्धि कामी कहते हैं। तो इन तीनों ही दो प्रकार के लोगों के मन में कोई ना कोई कामना होती है, इसलिए इनको कामी कहते हैं। और ऐसे कृष्ण भक्त, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई कामना होने के कारण वो अशांत रहते हैं। अतएव शांत अशांत। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत लंबा तात्पर्य लिखते हैं, इसमें कुछ चर्चा है क्या? चलो, और कोई चार्ट कौन सा है? देखिए, कृष्ण भक्त तक हम आ गए, इसके बाद वाला कौन सा है? जो अभी जो चर्चा की उसके बारे में आई। हाँ तो ये निकाल लो, चलेगा चलेगा, ऊपर लगा। तो भक्त सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है, तो कर्मी लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग होते हैं और फिर भक्त होते हैं। ये चार प्रकार के लोग होते हैं मनुष्यों में। जो भौतिक भोग की इच्छा रखता है वो कामी है, कर्मी है। जो ब्रह्म में लीन होने की इच्छा रखता है वो ज्ञानी है। जो योगिक सिद्धियों की इच्छा रखता है वो योगी है। ये सारे स्वयं की इच्छा पूर्ति में लगे हैं, अतः ये सारे अशांत होते हैं, क्योंकि हरेक का कोई ना कोई स्वार्थ है। हरेक कोई ना कोई अपने लिए कुछ प्राप्त करना चाहता है, परंतु कृष्ण भक्त उसकी सेवा क्या होती, इच्छा क्या होती है? कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को संतुष्ट करना। वो अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखता, कृष्ण के लिए इच्छा रखता है, कृष्ण को संतुष्ट करना। इसलिए वास्तव में वो निस्वार्थ होता है, और निस्वार्थ होने के कारण वो शांत होता है। दूसरे शब्दों में, थोड़ा बहुत भी यदि स्वार्थ हमारे चेतना में आ गया तो हम शांत नहीं हो सकते। स्वार्थ हमारे मानसिक शांति को भंग करता है। निस्वार्थपन ही हमारे मन को शांति प्रदान कर सकता है। तो कोई स्वार्थ नहीं, अतः वो शांत है। ठीक है, अब आगे और एक चार्ट बताइए। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं भक्त के निस्वार्थपन के बारे में। ऊपर थोड़ा सा ऊपर और ऊपर के सबको दिखाई पड़े। कोई पहला पॉइंट क्या है? भक्त की इच्छा शून्यता। इच्छा शून्यता मतलब डिजायरलेसनेस। किस तरह की इच्छा? भौतिक इच्छा नहीं होना। तो भक्त की इच्छा शून्यता। हाँ कोई पढ़िए पहला पॉइंट क्या है?
भक्त जानता है कि श्री कृष्ण ही उसके सुहृद तथा रक्षक है।
हाँ तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस तरह से अपनी व्याख्या करते हैं इस बात के बारे में, ये साबित करने के लिए कि भक्त वास्तव में इच्छा शून्य होता है। और ऐसे इच्छा शून्यता का तात्पर्य क्या होता है? सर्वप्रथम भक्त के हृदय में ये अटूट श्रद्धा होती है कि कृष्ण ही उसके सुहृद हैं और उसके रक्षक होते हैं। दूसरी बात,
इसलिए भक्त कृष्ण के लिए ही जीते हैं तथा उसकी कोई निजी आकांक्षा नहीं होती।
हाँ, इसलिए वो केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए, केवल कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए जीते हैं। अपने लिए जीने का कोई उनको कोई उनकी इच्छा नहीं होती है। कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, बस।
हाँ, भक्त के लिए अपना श्रेय कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सर्वश्रेयस्कर श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व होते हैं।
तो भक्त के लिए एक बार वो कृष्ण के शरण में आ जाता है और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, तो उसे अलग से अपने हित के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि मेरी भलाई कैसे हो, मेरी उन्नति कैसी हो, प्रगति कैसे करूं। सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है?
और उनको जो चाहिए वो उनको प्रदान करते
हैं। भगवान ही परम सत्य है। भगवान सब कुछ देखभाल करेंगे भक्त के लिए। भक्त का हित किसमें है, भगवान वही करेंगे। तो जब भगवान ये देखभाल करेंगे भक्त के हित के बारे में, तो भक्त को क्या चिंता है अपने हित के बारे में? जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, वो अपने हित के बारे में क्यों चिंता करेगा? जब उसे पता है कि मेरे पिता मेरे साथ में है, वो सड़क में जाता है, हो सकता है अकेला जाता है तो बड़ा लड़का आके उसे छेड़ता है, हैरान करता है, डरता है वो बच्चा। पिता के साथ में जाता है तो कोई डर नहीं रहता। वो अपने हित के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता है कि पिता साथ में है। वो बड़ा लड़का है, वो तो दूर जाएगा, पास में नहीं आएगा पिता को देख कर। फिर निडर रहता है, निश्चिंत रहता है बच्चा, तो वो नहीं सोचता कि मुझे मेरे लिए अच्छा क्या होगा नहीं होगा। उसी तरह से भक्त भी, भक्त को सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि मेरा हित किस चीज में है, मुझे अब क्या करना चाहिए। कृष्ण मेरी देखभाल करेंगे ना, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मेरा हित तो कृष्ण देख रहे हैं, तो मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण की सेवा ही करनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं? शरणागति और श्रद्धा। भगवत गीता के तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत से श्रद्धा शब्द की परिभाषा क्या दी गई है?
श्रद्धा शब्द
कृष्ण भक्ति को सर्वकर्मा कृता है।
तो श्रद्धा वो दृढ़ विश्वास है कि यदि मैं श्री कृष्ण की सेवा करूं तो मेरे सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे, सारे कर्म संपन्न हो जाएंगे केवल इस एक कार्य को करने से, वह है श्री कृष्ण की अहितु की सेवा। तो ऐसे विश्वास को, दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। तो भक्त का ऐसे, भक्त की ऐसी श्रद्धा होती है, इसलिए वो अपने हित के बारे में परवाह नहीं करता कि कृष्ण ही मेरा देखभाल करने वाले हैं। अच्छा, आगे।
वो भक्त इच्छा शून्य इसलिए होते हैं कि सेवा के अतिरिक्त उनकी अन्य कोई इच्छा नहीं होती, और भक्त उसी से संतुष्ट होते हैं।
तो भक्त कभी ये नहीं चाहते हैं, नहीं सोचते हैं कि मुझे और कृष्ण के अतिरिक्त और भी कोई चीज आवश्यक है जीवन में, कृष्ण है पर्याप्त है। तो कृष्ण की सेवा ही उसके लिए सब कुछ होता है, और यही एक इच्छा होती है, और इसी से वो संतुष्ट रहता है। कृष्ण की सेवा के बाहर किसी भी वस्तु में वो अपनी संतुष्टि या खुशी ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। तो ये है भक्त की इच्छा शून्यता। इच्छा शून्यता या डिजायरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इच्छा ही नहीं होगी। कई ज्ञानी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपको इच्छा शून्य करना चाहिए, आप ध्यान में बैठो और विचारों को बंद कर दो। फिर वो ध्यान में बैठते हैं, सोचते हैं मैंने अभी विचार करना बंद कर दिया तो ये भी विचार हुआ ना कि मैं विचार नहीं कर रहा हूं अभी। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हम पत्थर थोड़ी है, जीव चेतन है। जो चेतना का लक्षण है कि वो इच्छा करेगा, विचार करेगा, सोचेगा। तो इच्छाओं को पूरी तरह से शून्य करना ये कैसे संभव है? नहीं संभव है। चेतन किसी वस्तु के लिए संभव नहीं है, तो इच्छा नहीं होना चाहिए। इच्छा शून्यता का मतलब है कि निस्वार्थ इच्छा होनी चाहिए, केवल कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा होनी चाहिए। अन्य कृष्ण की सेवा को छोड़कर अन्य कोई भी इच्छा हो, सूक्ष्म या स्थूल, उसे स्वार्थ कहते हैं।
महाराज, यहाँ पे एक गर्भी ज्ञानी और योगी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपनी
बात नहीं काट रहे हैं। कौन जवाब देंगे इस प्रश्न का?
गीता में बहुनाम जनमान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो सच्चा ज्ञानी वो जो भगवान को प्राप्त करता है, तो सभी बताए वो अविशुद्ध बुद्ध है, पूर्णतया ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। सो ही कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रू ज्ञानी इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म।
मेरे ऊपर ध्यान करने वाला योगी ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे ऊपर ध्यान कर तू सर्वश्रेष्ठ है।
तो क्या यहाँ अन्य भक्तों के अलावा जितने श्रेणी है उनको हीन दृष्टि से दिखाया गया है?
भक्तों के कंपैरिजन में नीचे दिखाया गया,
परंतु अशांत कहा गया।
हाँ, किस दृष्टि से अशांत कहा गया है? किस दृष्टि से अशांत कहा गया है? तो इनकी अशांतता किस पर निर्भर है?
There is something to be attained. Where the devotee has nothing to be attained.
Because any jiva is God. So, because now his natural taste of another will not come to him.
ठीक है. आपका एक जो स्वाभाविक स्थान है जहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है, आप शांत रहते हैं, उस स्थान से बाहर या हट के कोई दूसरे जगह में जाएंगे, आप शांत रहेंगे? नहीं रहेंगे. क्यों नहीं? क्योंकि आपके स्वाभाविक वातावरण से हट के आप चले गए हैं. तो जीव का स्वाभाविक या स्वरूप क्या है?
स्वरूप है कृष्ण
की सेवा करना. तो कृष्ण की सेवा में वो शांत रहेगा क्योंकि उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है. उस स्वरूप से, उस स्वभाव से यदि हट के वो कोई काम करेगा तो वो शांत रह सकता है?
नहीं,
बस वही बात.
लेकिन वो अपने स्थान की तरफ जा रहा,
ठीक है, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं, इसलिए अभी तक अशांत है. वो जानता नहीं है अभी तक कि कृष्ण ही मेरे. यदि वो जानता गंतव्य है तो भक्त बन जाता, क्योंकि वो नहीं जानता है कि कृष्ण मेरे गंतव्य हैं, कृष्ण को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए तो वो कर्मी ज्ञानी योगी कहलाते हैं. यदि वो जानते कि कृष्ण को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है तो वो भक्त बन जाता है. कल हम भक्त की परिभाषा दे रहे थे ना, दो चीजें बता रहे थे. कौन सी दो चीजें थी? एक नहीं,
वो कृष्ण को जानता है.
भक्त कौन है?
गोल ऑफ लाइफ इज क्लियर टू सब.
हाँ, जिसे दो चीजें पता है उसको, कृष्ण परम सत्य है, इस बात की पूरी निष्ठा है, विश्वास है. दूसरी बात, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, ये जीवन का एकमात्र ध्येय है. जो इन दो चीजों को अच्छी तरह से जानता है श्रद्धा पूर्वक, वो कृष्ण भक्त है. तो हालांकि ये योग के सीढ़ी में है और धीरे धीरे चल के हो सकता है पहुंच जाएंगे, लेकिन हो सकता नहीं भी पहुंचे. कब वो पहुंच सकते हैं? ये जरूरी नहीं है कि हरेक कर्मी, हरेक ज्ञानी, हरेक योगी भक्त बनेगा. क्यों नहीं जरूरी है? हाँ, ये सही बात है. जब तक कि कर्मी ज्ञानी योगी को भक्तों का संग नहीं मिलेगा, वो भक्त नहीं बनेंगे. तो अशांत क्यों कहलाए गए हैं? इन दो कारणों से कि पहली बात, उनको पता नहीं है कि कृष्ण मेरे ध्येय है. दूसरी बात कि जब तक कि उनको भक्तों का संग नहीं मिलेगा, वो भक्त नहीं बन सकते. और क्योंकि वो अपने स्वरूप से हटके हैं, इसलिए शांति नहीं है उनकी पूर्णतः. उस रास्ते में स्थित हैं वो, परंतु वो नहीं जानते कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है. वो सोच रहे रास्ता कहीं जा रहा है, निराकार ब्रह्म में जा रहा है, वो ऐसे सोच रहे हैं. लेकिन उससे भी आगे है कुछ स्थान और वहां भी हमें जाना है, ये नहीं पता उन्हें. इसलिए इनको इस दृष्टि से कहा गया है. और अभी तक वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे दुखों से राहत चाहिए, मुझे सुख चाहिए. भोगी सोचता है, कर्मी सोचता है, मुझे सुख चाहिए. ज्ञानी सोचता है, मैं हैरान हो चुका हूं इस दुनिया के कष्टों से, मैं राहत चाहता हूं दुखों से, तो मैं लीन हो जाऊंगा और इस सब फिर सपनों की दुनिया से ब्रह्म सत्य में स्थित हो जाऊंगा, जगत मिथ्या है सब. और योगी सोचता है, मैं तो सिद्धियां प्राप्त करके राज करूंगा. तो सब अपने बारे में सोच रहे हैं. भक्त किनके बारे में सोचते हैं?
कृष्ण
के बारे में. इसलिए वो अशांत माने जाते हैं. ये तीन, कर्मी ज्ञानी और योगी. तो ये बात स्पष्ट हो गया?
गीता में कहाँ पे कहा गया कि गीता में कहा गया कि ज्ञानी को भी अच्छा श्रेणी दिया गया, बट वी अंडरस्टैंड दैट इधर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट ज्ञानी इज नॉट एज मंडेन ज्ञानी. विच आर द वर्सेस विच हाईलाइट ज्ञानी showed in exalted position.
ज्ञानी शब्द जो है इसके कई अर्थ हो सकते हैं. किस संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया गया है उसके ऊपर हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा ज्ञानी है. ज्ञानी वो हो सकता है जिसको ज्ञान है, वो ज्ञानी है. लेकिन यहाँ जिस भाव से ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया गया है वो ये है कि जो ज्ञान योग के पथ में चलता है, जो मानसिक चिंतन के द्वारा आध्यात्मिक सत्य की प्राप्ति करता है और जो निराकार समझता है परम सत्य को और निराकार में लीन होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं. तो कई जगह भगवत गीता में ज्ञानी शब्द का प्रयोग इस दृष्टि से नहीं कहा गया है. कभी कभी ऐसा ही है कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष है, ऐसे भी कहा जाता है. और जहां तक ये सवाल है कि कहां का कहा गया है कि वो भी परम सिद्धि प्राप्त करता है, भगवद गीता के 12वें अध्याय में क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन?
Which is better?
Impersonal or
परम सत्य. या दो प्रकार के लोग जो होते हैं, एक कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्त होता है, दूसरा निराकार की प्राप्ति करने वाला होता है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन होते हैं? तो तुरंत कृष्ण क्या जवाब देते हैं? कृष्ण भक्त श्रेष्ठ होते हैं. और दूसरे
बहुत
नहीं, उसके पहले उसी श्लोक के दूसरे भाग में क्या कहते हैं? दूसरे भी होते हैं, वो भी परम सत्य को प्राप्त करते हैं आखिर, परंतु उनकी परम सत्य की धारणा अलग होती है. पढ़ो भगवद गीता.
मैं ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्त मय आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परेपतेस ते मे युक्त तम मत.
तो कौन श्रेष्ठ है दोनों में से?
मय एव आवेश मनो
जो भगवान को मेरा भक्त है, जिसकी चेतना मुझ में लगी हुई है, वो श्रेष्ठ है. उसके बाद
ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिउपासते सर्वत्र गम अचिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संवेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता.
क्या उसका क्या तात्पर्य है बताओ?
जो अव्यक्त का उपासना करते हैं वो भी मेरे को प्राप्त करते हैं.
लेकिन
बहुत
क्लेशोधिकरस्तेषाम
अव्यक्ता सक्त चेतसाम कष्ट होता है बहुत ज्यादा, ये पहली बात है. और दूसरी बात है कि ज्ञानी जब परम सत्य की प्राप्ति करते हैं, जैसा कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, तो किस तरह से प्राप्त करते हैं? जैसे कृष्ण भक्त प्राप्त करते हैं वैसे प्राप्त नहीं करते. उनकी परम सत्य की प्राप्ति में और कृष्ण भक्त के परम सत्य की प्राप्ति में अंतर होता है. किसी उपमा के द्वारा कोई समझा सकते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के कक्षाओं में इसकी चर्चा हुई थी, कौन बता सकता है? किसी को याद है?
असुर लोग की मृत्यु होती है तो वो भी वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते
समुद्र में.
एक उपमा थे
बिल्ली
राजा. एक हिंट देता हूँ.
राजा के जो मंत्री होते हैं या सेवक होते हैं समान रीति से
अलग है. जब कोई लोग राजधानी में प्रवेश करते हैं उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो आके राजधानी के अंदर राजमहल में प्रवेश करते हैं. राजधानी में बहुत से लोग प्रवेश कर सकते हैं, परंतु राजमहल में कौन प्रवेश करेगा?
राजा के निकट के लोग.
जो निकट के लोग हैं, जो राजा को अच्छी तरह से निजी रूप से पहचानते हैं, वही लोग राजमहल में जा सकते हैं. तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत जो है ये राजधानी के समान है, राज्य के समान। तो जो ज्ञानी परिपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं वो भी राज्य में अर्थात आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, कृष्ण भक्त भी करता है, परंतु ज्ञानी कहाँ जाएगा? ज्योति में लीन हो जाएगा। वो राजधानी में या राज्य में प्रविष्ट हो गया, परंतु राजमहल में कौन जाएगा? कृष्ण भक्त जाएगा, अर्थात वो वैकुंठ लोकों में जाएगा भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। तो निराकार ब्रह्म भी परम सत्य का ही एक प्राकट्य है, इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि ज्ञानी भी परम सत्य को प्राप्त करता है, परंतु निराकार ब्रह्म की ही प्राप्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करता है। तो जब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भी मुझे प्राप्त करता है, ये किस तरह से प्राप्त करता है ये हमें जानना चाहिए। तो ये स्पष्ट है हा? तो इसलिए यहाँ जो ज्ञानी की बात होती है, ज्ञानी भगवान को प्राप्त करते हैं परम सत्य को, लेकिन परम सत्य के निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
तो पहले दिखा कि उनका पतन भी हो सकता है, लेकिन
हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस चेतना के हैं। ऐसा नहीं कहते कि अवश्य होगा, हो सकता है। तो यदि वो, और ये बड़ा विषय है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके कई श्रेणियां हैं, कौन से लोगों का पतन होता है, कौन से लोग नहीं होते हैं। संक्षेप में ये कह दे कि केवल वही ज्ञान योग का पालन करने वाले लोग ज्ञान योग की परिपूर्णता प्राप्त कर पाएंगे जो कि भक्ति योग का सहायता लेते हैं। भक्ति योग का जो पथ है वो अपने आप में स्वतंत्र है। भक्ति योग को का पालन करने वाले लोगों को अन्य किसी योग पद्धति को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अन्य जो योग पद्धतियां हैं वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उन मार्गों में भी परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए उनको भक्ति योग की सहायता लेनी पड़ती है। और वही ज्ञान योगी परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने भक्ति योग की सहायता ली है। केवल वो अपने बल पे चलेगा तो नहीं नहीं कर पाएंगे, और कभी इसके बारे में चर्चा हम कर सकते हैं, परंतु संक्षेप में ये सार है। ठीक है,
भक्ति रसामृत सिंधु में,
थोड़ा जोर से बोलो सबको सुनाएंगे।
भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आते है, मुक्ति मुक्ति पिशाची का कुछ बताया गया है कि जो भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के ऊंचे स्तर को प्राप्त करके जब उनके हृदय में से इच्छाएं चले जाते हैं तभी ये वो कृष्ण भक्त वो स्तर पहुंच जाते हैं जहाँ उसको भक्ति और मुक्ति और सिद्धि कामी नहीं है। सही है।
जब तक कि स्वार्थ नहीं निकल जाता तब तक व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं बन सकता, परंतु स्वार्थ जाएगा कैसे?
भक्ति।
हाँ, जब कृष्ण भक्त का संग होगा तब तब उसे भक्ति के बारे में पता चलेगा, कृष्ण भक्ति के पथ में वो प्रवेश कर पाएगा। वो कौन सा श्लोक है जो बोल रहे थे अभी? श्लोक का नाम, श्लोक बहुत अच्छा, फिर से धीरे धीरे से बोलो और उसका शब्दार्थ बोलो। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत, मतलब क्या?
जब तक भुक्ति है,
स्प्रिया मतलब इच्छा, यावत मतलब जब तक। तो जब तक मुक्ति और भुक्ति की इच्छा हृदय में है, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत हृदि वर्तते, जब तक हृदय में है तब तक
भविष्य
सुखस्यत्र, भक्ति का जो सुख है
कैसे
हो सकता है? कैसे वो भक्ति का आनंद मिल सकता है। ये दो भुक्ति मुक्ति कैसे है,
पिशाची
पिशाची हृदि वर्तते। पिशाची मतलब
भूत,
चुड़ैल, चुड़ैल होते हैं ना, जानते हैं विच। तो जब तक ये भुक्ति और मुक्ति के जो विच चुड़ैल हमारे हृदय में वास कर रहे होते हैं, तब तक भक्ति का आनंद कहाँ से मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसलिए कृष्ण भक्तों का संग ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कोई ना कोई उनकी अन्य कामना होने के कारण उनको अशांत बताया गया है, ठीक है। फिर अंत में इस विषय का अंत करने के लिए कि मुक्त भक्त दुर्लभ होता है, अंतिम श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत का, और इस श्लोक को भी हम सबको कंठस्थ करना अच्छा रहेगा। मुक्तानामपि सिद्धानां,
मुक्तानामपि सिद्धानां,
नारायण परायणः,
नारायण परायणः,
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा,
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा,
कोटिष्वपि महामुने,
कोटिष्वपि महामुने।
मुक्तानां अपि सिद्धानां मतलब ऐसे मुक्त पुरुषों में से और सिद्ध पुरुषों में से, किस तरह के सिद्ध पुरुष, जिन्होंने भौतिक सिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे लोगों की बात हो रही है। नारायण परायण है, जो व्यक्ति नारायण का भक्त है या कृष्ण भक्त है, सुदुर्लभ है, ऐसे नारायण परायण जो है वो बहुत दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ मतलब रेयर, दुर्लभ, और सुदुर्लभ बहुत दुर्लभ होते हैं, और ये प्रशांत आत्मा होते हैं। प्रशांत प्रकृष्ट रूपेण शांत, पूरी तरह से शांत है। कोटिष्वपि महामुने, तो कोटि कोटि मुक्त पुरुषों में से, कोटि कोटि सिद्ध पुरुषों में से विरला ही एक कोई नारायण परायण प्राप्त होगा। और ये नारायण परायण जो कृष्ण भक्त है वो प्रशांत आत्मा, वो बिल्कुल शांत होगा। तो इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वो भागवत के आधार पर कह रहे हैं, तो अपने बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये विषय समाप्त हुआ कि कृष्ण भक्त दुर्लभ है। इसके बारे में कोई प्रश्न है,
रेफरेंस है हमारा इसके लिए, पिछले श्लोक के लिए, पिछले श्लोक के लिए ये रेफरेंस है, भागवत प्रमाण है,
प्रमाण है, प्रमाण है,
बिरला है, बिरला है,
जब एक दूसरे में आते हैं नहीं लगता है कि कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ है, इतने सारे कृष्ण भक्त बैठे हैं कहाँ दुर्लभ है। कभी कभी लगता है कि थोड़ा दूर ही चले जाए। बहुत ज्यादा हो गया सत्संग। थोड़ा सत्संग से मुक्ति प्राप्त करते थोड़ी देर के लिए, फिर से मन शांत हो जाएगा, फिर से सत्संग लेने आ जाएंगे। ये जो बात की गई है ये संसार पूर्ण ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से बात की गई है। तो पूर्ण ब्रह्मांड में कितने हैं, अभी हमारा भाग्य है कि ये सारे कृष्ण भक्त इकट्ठे हुए हैं एक जगह में, हमारा सौभाग्य। ऐसे नहीं होता तो कृष्ण को प्राप्त करना असंभव होता हमारा। वो जो प्रेरणा मिलती है, देखो एक सारे भक्त इकट्ठे होने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। आज कैसे कीर्तन होगा सुबह, कुछ फर्क पड़ा, किस तरह का फर्क पड़ा, अच्छे फर्क पड़ा कुछ, सब लोग कितने उत्साही लग रहे थे, क्यों लग रहे थे, भक्तों का संग था, जब भक्तों का संग रहता है, अधिक संख्या में भक्त रहते हैं, सभी लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, श्रवण कर रहे होते हैं, तो उसमें एक प्रभाव अलग ही होता है। तो हमें लाभ बहुत मिल रहा है। अतीत परिचयाद अवज्ञा, अंग्रेजी में कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि ज्यादा परिचय होने के कारण कभी कुछ हम अलग 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 सोचने लगते हैं, भक्तों के बारे में अनादर करते हैं, कुछ गलत सोचने लगते हैं। नहीं सोचना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कृष्ण भक्तों का संग प्राप्त करके। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में आत्मा अभी आत्मा बीज रूप है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा को अपना सही स्वरूप मिल जाएगा। बीज जैसे खिल उठता है ना, अभी अब देखिए एक पौधा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। कभी कभी कई पौधे हैं जो इतने ही बड़े होते हैं, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। कभी कभी अभी अश्वत्थ वृक्ष का जो बीज है वो आगे चल के कितना बड़ा होगा, अश्वत्थ वृक्ष कितना बड़ा होता है। तो बीज दोनों के बराबर जैसे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन एक बीज जो है इतने बड़े शरीर वृक्ष में परिवर्तित होता है, दूसरा बीज इतने सारे इतने बड़े एक पौधे में परिवर्तित होता है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी अपने अपने स्वरूप के अनुसार आत्मा का आकार, आत्मा का रूप, आत्मा का साइज जो है, लंबाई चौड़ाई, वो अलग अलग हो सकती है। कोई गोप बनेगा, कोई गोपी बनेंगे, कोई मोर बनेंगे, कोई पेड़ बनेंगे, कोई घास का तिनका बनेगा, अलग 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 चीजें बनेंगे। तो जैसे जैसे स्वरूप होगा वैसे वैसे भक्त का रूप आकार इत्यादि सब होगा। वहां नहीं, वहां शरीर और आत्मा अलग नहीं होता। यहाँ शरीर भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है, परंतु वहां पे शरीर आत्मा एक ही है। आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है। वहां सब कुछ आध्यात्मिक है, चेतन है, चिन्मय है। आत्मा क्या निराकार ब्रह्म में लीन वास्तव में होता है क्या? इसके लिए कोई उपमा दे सकते हैं?
एक हरा पेड़ है, हरा पेड़ में एक हरा तोता जाके बैठा, तो तोता अपना अस्तित्व को ऐसा ही रखता है, पेड़ का अस्तित्व ऐसा रहता है, पेड़ तोता नहीं बनता, नहीं तोता पेड़ बनता है। तो उसी प्रकार जो आत्मा ब्रह्म में लीन होता है उसका भी अस्तित्व ऐसा ही रहता है।
सही बात। तो आत्मा जाके निराकार ब्रह्म में रह जाता है, एक अणु की तरह सूर्य की किरणों में जैसे कोई अणु है वहां जाके बैठ जाता है, परंतु उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। और इसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया था कि हरे रंग का तोता एक हरे वृक्ष में प्रवेश करता है, ऐसे लगता है कि वो लीन हो गया। एक दृष्टि से ये गलत भी नहीं है ये कहना कि वो लीन हो गया, क्योंकि वो वृक्ष में प्रवेश कर गया। परंतु प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि उसने अपना अस्तित्व खो दिया, अपना व्यक्तित्व खो दिया, ऐसे नहीं। उसका व्यक्तित्व अभी तक है। तो जीवात्मा का व्यक्तित्व या अस्तित्व कभी नष्ट, व्यक्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। इसके लिए भगवत गीता का क्या प्रमाण है? क्या मतलब इसका?
ना तुम जातु नाश, ना तो कभी तुम्हारा नाश हुआ है, ना तुम ने में जनाधिपा जना, ना ही कभी राजाओं का जो यहाँ पर है उनका नाश हुआ, ना चेव ना भविष्य, ना कभी हुआ हो, ना चेव ना भविष्य, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। सर्वे वैमत परम, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, मैं तुम और ये राजा।
इसका मतलब क्या? क्या वो शरीर की बात कर रहे हैं? शरीर की बात की होती तो कैसे कहते कि इनका नाश कभी नहीं होगा? शरीर का नाश तो होना ही है ना, तो किस चीज का नाश नहीं होगा फिर? आत्मा का नाश। तो आत्मा ऐसे नहीं कि कभी व्यक्ति तो खो बैठेगा। और एक श्लोक ममैवांशु जीवलोके सनातन कि ये मम एव अंश है सनातन है, ये सनातन मेरा अंश है, ऐसा नहीं है कि वो कभी पूर्ण हो जाएगा, आज अंश है और कल जाके पूर्ण होगा, ऐसे कभी भगवान नहीं कहते हैं। अंश अंश ही रहेगा, इसलिए अंश का अंशत्व या अंश का जो एक व्यक्तित्व रहता है वो हमेशा रहेगा, वो कभी पूर्ण नहीं रहेगा, बनेगा। ठीक है, उब नहीं जाते ऐसा प्रश्न कौन बताएंगे, उत्तर दोगे सचिव?
अपने स्वरूप में रहते हैं।
क्या करते क्या है उनका प्रश्न, करते क्या है जाके वहाँ?
जैसे एक घर रहता है उनको सब कुछ जो, लेकिन बाहर जाने का उनको नहीं मिलता,
उनको केवल शांति मिलती है लेकिन परम आनंद नहीं मिलता है, परंतु गोलोक वृंदावन में जाके करते क्या है?
जो पहले से सेवा रहती है जो भगवान के साथ वो फिर से शुरू होता है।
क्या किसे क्या क्या सेवा करते हैं
जो पहले की जो भगवान के साथ उनका जो
क्या क्या है
क्या हो सकता है गाय चराना
तो संबंध है भगवान के साथ, जैसे कोई सखा है कोई वात्सल्य रस में तो भगवान के माता पिता बनेंगे।
तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन प्रकट हुए वृंदावन में आए थे तो उस समय उन्होंने कौन सी लीलाएं किए पता है ना, कितने सारे लीलाएं हैं, तो असुरों का वध आदि छोड़ के ऐसे गिने चुने लीलाएं हैं जो भगवान के धाम में नहीं होते हैं, जो केवल भौम वृंदावन में होते हैं, परंतु भगवान की गोचारण लीला रास लीला ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं जो गोलोक वृंदावन में वहां पे होते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ में नित्य रूप से रहते हैं और लीला करते रहते हैं ऐसे, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया। तो जो वहां चल रहा था उसको दिखाने के लिए हम सब के लिए भगवान यहाँ आए कि देखो मेरे गोलोक वृंदावन में ये सब चलता है, क्योंकि भगवान को पता है कि ऐसे प्रश्न करेंगे भाई वहां जाके करेंगे क्या तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या करोगे। तो वहां का मैं चित्र है वो यहाँ पे प्रकट कराऊंगा, तो फिर पता चलेगा कि वहां क्या चल रहा है। ब्रह्म ज्योति में जा ये नहीं कहा तो तुझे, हम लोग गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं, तो वहां जाके करेंगे क्या? मेरा कहा ब्रह्म में जाके क्या करेंगे, कौन उत्तर देंगे? ओम शांति
शांति शांति
निष्क्रियता बस बैठेंगे ऐसे कोई कार्य नहीं अस्तित्व सत रहेगा चित रहेगा पर पूरा पूर्णतया नहीं, सत है और थोड़ा बहुत चित है, क्योंकि चेतना तो है परंतु चेतना की परिपूर्णता नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानते, वो आनंद नहीं है, शांति है ना, ओम ओम शांति शांति शांति, इसलिए उनमें से कभी कभी लोग फिर नीचे आ जाते, हमको शांति नहीं हमको आनंद चाहिए। ठीक है नहीं बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ा करने के बाद उस एक टुकड़े को फिर से 100 टुकड़े करने के बाद जो रहेगा वो आत्मा है। का परिचय है। ज्ञान चक्षु के द्वारा जानना मतलब इन आँखों के द्वारा देखना नहीं है। तो ज्ञान अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वही है ज्ञान चक्षु के द्वारा देखना। तो हम ज्ञान सुनते हैं, हम कानों के द्वारा देखते हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि ये आत्मा का परिचय है। आत्मा इतनी छोटी है, हम अपने कानों से सुन रहे हैं अर्थात हम देख रहे हैं आत्मा को, ये है ज्ञान चक्षु। ठीक है, हाँ हाँ बड़े हो जाता है, बीज जैसे बहुत छोटा है ना, लेकिन अंततः कितना बड़ा अश्वत्थ वृक्ष हो जाता है, वैसे आत्मा अभी छोटा है, लेकिन अब जब गोलोक वृंदावन में जाएगा तो उसका पूरा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अभी तो केवल बीज रूप है।
ब्रह्मलोक में
ब्रह्म ज्योति में बस आत्मा का ही स्वरूप होता है, जैसे अभी उसमें बीज रूप ही रहता है, जैसे सूर्य की किरणों में अणु, बस वैसे ही रहता है।
सोचता है, अनुभव करता है, तो मन भी वैसे ही करता है।
वैसे चेतना आत्मा का लक्षण है ना। चेतना क्या चीज है? चेतना मतलब मैं हूं, ये मैंपन, ये इसको चेतना कहते हैं। तो चेतना आत्मा का है, आत्मा का लक्षण होता है। मन ये भौतिक चीज है, बुद्धि भौतिक चीज है, भौतिक शरीर का हिस्सा है। तो अभी आत्मा की चेतना मन के द्वारा प्रकट होती है, बुद्धि के द्वारा प्रकट होती है, इंद्रियों के द्वारा प्रकट होती है। ठीक है, मन तभी कार्य कर सकता है जब उसके पीछे चेतना है। चेतना नहीं होगी तो मन काम नहीं कर पाएगा। हम कान से के द्वारा सुन के इस ज्ञान को जान के इस योग्य बन सकते हैं कि हम भगवान के धाम में प्रवेश करके आंखों के द्वारा उनको देख सके। पहले कान से देखना है, फिर जाके आंखों से देखने की योग्यता मिल सकती है। कानों से देखे बगैर हम आंखों से देखने की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। और किसी ने हाथ ऊपर किया था ना। हाँ,
तो सच में आत्मा उतना ही सही
कार्य। एक अनुमान दिया गया है, ऐसा नहीं कि कोई टेप लेके वो उसका ओ इसका इतना होगा। अनुमान है कि हम समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा है। एक केश का अग्रभाग लो तो अग्रभाग कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कितना होगा अग्रभाग। तो अनुमान दिया जाता है कितना छोटा है, बहुत छोटा है। ये समझाने के लिए कि इतना छोटा है कि
बहुत सूक्ष्म
है कि हम समझ नहीं सकते, ये समझाने के। चलो अभी आगे अगला विषय में जाएं, थोड़ा 5 मिनट आराम करना है। 5 मिनट आराम करेंगे, फिर आप आइए 5 मिनट में, ज्यादा समय मत लीजिए। फिर हम 12 बजे तक करेंगे, 12 बजे के बाद थोड़ा आराम कर लीजिए आप, थोड़ा बहुत समय फिरे हैं, थोड़ा आराम करके प्रसाद लेके शाम को फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा। अभी हम भक्ति लता की चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, हमारे भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, हरे कृष्णा।